दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतीव डंग, जो कि CEO हैं ग्लो ट्रेड्स कंपनी के। चर्चा ये जारी है कि वे देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो दबाव हैं उन पर हम सतत चर्चाएं करते रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हालांकि RBI ने फिलहाल के लिए रोक दिया है, पर अब जो मॉर्गेज पेमेंट्स हैं और जो इस महीने से ही बल्कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट की प्रथा शुरू होने जा रही है, उस सब का सीधा असर पड़ेगा हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स पर। तो आज अतीव से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो नए दबाव हैं ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स पर असर डाल रहे हैं। अतीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी में।
शुक्रिया वैशाली, और थैंक यू मेरे को SBS हिंदी से बुलाने के लिए और उससे जुड़ने का एक मौका देने के लिए।
अतीव, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो आय के कौन से हिस्से से, यानी इनकम के कौन से हिस्से से किए जाते हैं, और जब खर्चे बढ़ जाते हैं तब ये इन पर कैसे दबाव बढ़ता है?
आपका जो आपकी नॉर्मल इनकम होती है, सैलरी हो गया आपका, फिर दूसरी जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका रिटर्न जो वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया, आपको जो इनकम आता है उसमें से एक पोर्शन आप सेव करते हैं, उसमें उसको आप सेविंग में डालते हैं, तो ग्रेजुअली उससे आप एक फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, या आप मार्केट में उस पैसे को दोबारा डालते हैं, या आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी तरीके से आप इनकम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, फिलहाल। फिलहाल के लिए रोका है क्योंकि हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2-3 इंटरेस्ट रेट राइज अभी भी होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी RBI का जो टारगेट है 4% का, उसके अभी भी बाहर है। हाउ डज इट इम्पैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स? तो अब क्या होता है कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने 2020 में घर लिया था नया अपना, तब मेरी मॉर्गेज पेमेंट्स करीब $2,500 थी महीने की, अब वो बढ़कर $4,300 हो गई है, तो मेरा खर्चा $1,800 तो यहीं पर हो गया ना मॉर्गेज का इंक्रीज। तब मेरे को वो पैसा जो मेरा इनकम है, या तो मेरी इनकम उतनी बढ़े आए, नहीं तो जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स है वहां से मेरे को निकालना पड़ेगा।
जी, तो यही एक चर्चा दरअसल हमारी हमारे एक मित्र से भी हो रही थी। तो मीडियन एज जो भारतीय समुदाय की है वो 36 साल की है ABS के आंकड़ों के अनुसार, यानी सभी अब ज़्यादातर यंग फैमिलीज़ हैं, एवरेज इनकम होल्डर्स हैं, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट इस माह से शुरू हो जाएंगे। तो वे बता रहे थे कि पिछले माह के बनिस्बत इस माह उनका 1100 का तो मॉर्गेज का पेमेंट ही बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास चाइल्ड केयर के भी खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे भी बढ़ रहे हैं, मॉर्गेज का खर्चा भी बढ़ रहा है, ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में जो पैसा जा रहा था या जो एग्जिस्टिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा?
जब आपका आपके पास स्पेयर इनकम होती है उससे आप ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो अपना खर्चा ही पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तब इन्वेस्टमेंट्स में कैसे डालें? तो जैसे कि आपने कहा कि वेरिएबल इंटरेस्ट से, तो इस महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी लोग फिक्स पर थे 50% ऑफ दोस फिक्स वन वेरिएबल हो जाएंगे, तो उनके ऊपर एकदम से दबाव आएगा। तो जो मार्केट में पैसा आना होता है वो पैसा आना कम हो जाता है। इसी के लिए आप देखते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है तो मार्केट, शेयर मार्केट इमीडिएटली नीचे आ जाती है। कल रात को फेड के मिनट्स आए USA में, वो मार्केट रिकवरी कर रही थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट राइजेस, तो आज सुबह आपने ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट देखा आज काफी डाउन थी, क्योंकि अब क्या होगा, जिन्होंने पैसा मार्केट में लगाया हुआ दे वुड टेक दैट मनी आउट। दो चीजें, एक अगर वही पैसा बैंक पे फिक्स डिपॉजिट में करेंगे उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और दूसरा उनको अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी वो पैसा मार्केट से वापस लेना पड़ता है। धीरे धीरे शेयर मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपका एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो हर जगह पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट। सॉफ्ट रिसेशन जो RBI कोशिश कर रहा था कि एक तरीके से टेक्निकल रिसेशन है, सॉफ्ट है, हल्का है रिसेशन वो एम कर रहे थे, मगर एक सॉफ्ट वर्जन है, मगर जैसा कि अभी लग रहा है मेरे को, आई थिंक हार्ड रिसेशन ही ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। आई थिंक दे हैव गॉन अ बिट टू एग्रेसिव विद इंटरेस्ट रेट राइजेस।
वही एक और असर ये भी आ जाता है कि जो हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, खासकर जो हम ये यंग फैमिलीज की या फर्स्ट होम बायर्स की बात कर रहे हैं, या जो नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में लोग हैं, उन पर कैसा प्रभाव रहेगा, वहाँ कैसे ट्रेंड्स नजर आते हैं?
देखिए, अभी तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% जो फिक्स लोन्स थे, फिक्स रेट फॉर वेरिएबल, उनके लिए एकदम से खर्चा बढ़ेगा। दूसरा, जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो अगर आपको नया घर भी खरीदना है उसके लिए पैसे सेव नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक डाउन पेमेंट की जब जरूरत पड़ती है तो आप उसी में से सेव करके बना। दूसरा इम्पैक्ट उसका रेंटल्स पे पड़ रहा है, प्रॉपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, अगर इंटरेस्ट रेट पड़ेंगे तो वो भी तो अपना खर्चा कवर करेंगे ना कहीं से, आउट ऑफ पॉकेट तो नहीं जाएंगे तो वो रेंट पढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज ये होगी कि यस, प्रॉपर्टीज अब मार्केट में आएंगी, जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे वो डालेंगे, मगर आपकी लोन सर्विसेबिलिटी कम हो गई है, काफी ज्यादा कम हो गई है, तो फिर आपको लोन मिलना मुश्किल है, तो जो प्रॉपर्टीज मार्केट में है उनका सेल कम होगी तो अपने आप प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी डाउन आएंगे। बट अगर ऐसा होता है तो आपकी रेंटल्स प्रॉपर्टी भी कम होंगी, तो उससे रेंट्स और इंक्रीज होंगे, क्योंकि सप्लाई डिमांड की बात होती है, तो दैट्स गोइंग टू पुश इन्फ्लेशन फर्दर हायर।
तो इस सब का नतीजा और भी मुश्किलों भरा ही दिखाई दे रहा है, फिर आरबीआई जिस तरीके के सोल्यूशन एम कर रहा है वो कैसे होंगे?
देखिए, मैं काफी टाइम से ये बात कह रहा हूँ कि आरबीए का वॉर काफी हद तक गलत है। उन्होंने जो किया, जो हम लोग बचपन में पहले सुनते आए थे कि जहां इन्फ्लेशन होता है आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं एंड लोगों का खर्चा कम होता है, आपका इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है, एक हद तक सही है, मगर इस बार जो इन्फ्लेशन था वो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज में जा रहा था। मैं दूध का एग्जांपल दूंगा, आप कोल से दूध लेते हैं, पहले $1 लीटर था, तीन लीटर की बोतल $3 में आती थी, $3.90 की है, 30% इन्फ्लेशन आपका मिल्क में। ब्रेड आपकी $3.20 की थी, अब $4.40 की, आपका करीब 30-35% इन्फ्लेशन ब्रेड में है। ऑयल, पेट्रोल, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोल प्राइसेस $1.10, $1.20 लीटर से बढ़कर $2 के बीच घूम रहे हैं। इस 1 जुलाई से बिजली के बिल्स 20-25% बढ़ाए उन्होंने एक्सपेंसेस, तो ये एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल आपके खर्चे हैं, इसमें आप कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें ये खर्चे पर आप कम नहीं कर सकते। आप अपने घर के लिए दूध नहीं लाएंगे, ब्रेड नहीं लाएंगे, या पेट्रोल नहीं यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी घर की नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन से फाइट का तरीका ही गलत था। अगर फाइट करना था, सही तरीका था कि आप ये देखिए प्राइस गॉजिंग कहाँ पर हो रही है। जब यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, ऑयल प्राइसेस $200 बैरल, $120, $150 बैरल पहुंच गया था, उस टाइम पे $2.20, $2.30 प्राइस था। अब अगर ऑयल का प्राइस $60 बैरल आ गया है तो वो प्राइस नीचे क्यों नहीं आया? आप प्रॉफिट देखेंगे, शेल ने, कालटेक्स ने, सबने रिकॉर्ड प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कमाए, मतलब कि जहां पर प्राइस कम भी हो रहे हैं वहां पर इन्होंने प्राइस कम नहीं करे। तो इन्फ्लेशन की फाइट आप कितना भी करिए, जब दूसरी तरफ से कंपनी से वो राहत कस्टमर तक नहीं आएगी तो इन्फ्लेशन तो वहीं का वहीं रहेगा ना।
तो अतीव, आने वाले समय में एंड यूजर है जिसको ये सारा खर्चा उठाना है, जिसको ये सारा इन्फ्लेशन उठाना है, इंटरेस्ट रेट की मार उठानी है, वो अपने लिए सेविंग्स कैसे करे?
जैसे कि आरबीआई गवर्नर फिलिप लो ने कहा था, एक तो टफ टाइम्स है, दूसरी आपको डाइवर्सिफाइड इनकम के सोर्सेस बहुत जरूरी है अपने इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि दो ही तरीके है सेविंग्स से, या तो आप खर्चा कम करिए या इनकम बढ़ाइए। इस वक्त दूसरी चीज है कि जो आपका फिक्स इंटरेस्ट लोन्स है, जो बॉन्ड है, उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, लाइक आप 6 महीने का भी सब इंटरेस्ट करने जाते हैं बैंक में, आपको 4.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपके पास कुछ भी स्पेयर कैश है, आई से कि मार्केट में लगाने से अच्छा उसको भी फिक्स इंटरेस्ट लोन्स में लगाइए, आपको एक गारंटीड, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर मार्केट में पुल डाउन आता है, एक अपॉर्चुनिटी है आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने की, इन्वेस्ट करने की, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं, जो आपके गुड डिविडेंड रिटर्न दे रहे हैं 8%, 9%, ओके दे माइट नॉट हैव दैट मच कैपिटल ग्रोथ, मगर आपको एक सर्टेन इनकम एक रेगुलरली मिलने का एक चांस रहता है। बिकॉज मेरे को किसी का पर्सनल प्राइवेट सिचुएशन नहीं मालूम, तो मैं उनका फाइनेंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, मगर ये थैंकफुली मेरे बच्चे अभी स्कूल एज पर आ गए हैं चाइल्ड केयर, मगर ये उनके टाइम पर भी होता था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी चाइल्ड केयर खर्चा करने के, कम करने के लिए, मगर जितनी सब्सिडी आती थी उतने से ही वो अपनी फीस बढ़ा देते थे, रह देकर खर्चा वही का वही रह जाता था
जी।
और वही इस बार भी, तो ये एक डिसीजन है जो उनको खुद बैठकर आपस में एक सलाह करनी पड़ेगी कि अगर हमारे दो बच्चे चाइल्ड केयर जा रहे हैं या एक बच्चा चाइल्ड केयर जा रहा है और उसके साथ एक पेरेंट काम कर रहा है, क्या उस चाइल्ड केयर की फीस देने के बाद हमारे हाथ में कुछ बचता है? अगर अगर नहीं, फिर तो बेटर है वो पेरेंट एक्सटेंडेड लीव पर घर रहे, और अगर यस तो फिर उनको बिल्कुल काम पर जाना चाहिए, क्योंकि एनी डेंट जो आप एक्सपेंस में कर सकते हैं और घर की तरफ बचाने के लिए अपने पैसे कर सकते हैं, वो करना बहुत जरूरी है।
जी अतीव, आपने इतना समय निकाला SBS हिंदी के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यहाँ दी गई सारी सलाह सामान्य हैं, और अगर आप अपने लिए वित्तीय सलाह चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ सलाहकार से संपर्क करें।